नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पारित होने के लिए पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बोधगया में बौद्ध ध्यान और अध्यात्म केंद्र बनाने की परियोजना को मंजूरी दी। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन आज व्रती खरना का अनुष्ठान करेंगे। और मौसम विभाग ने कहा अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, कैमूर और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर बारिश और वज्रपात की आशंका। अब समाचार विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पारित होने के लिए पेश किया जाएगा। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि सदन में विधेयक पर चर्चा के लिए 8 घंटे रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी है कि सदन की राय जानने के बाद चर्चा के लिए समय बढ़ाया जा सकता है।
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया, तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया।
श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार विधेयक पर सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के कारण कानून का विरोध कर रहे हैं।
जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटिनाइज किया, चर्चा किया और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को, फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से इसमें जो प्रोविजन है उसको देख करके फिर से आज हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं।
इधर भाजपा, जदयू और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक पार्टियों ने लोकसभा में अपने सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हिप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और शासन में कमियों को दूर करना है।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित करना और वक्फ की संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करना है। इस विधेयक के जरिए मौजूदा वक्फ अधिनियम की कमियों को दूर करने के साथ साथ वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार लाना और वक्फ रिकॉर्ड के कुशल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने जैसे बदलाव लाकर वक्फ बोर्ड की दक्षता को बढ़ाना है। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस विधेयक को पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद इस बिल पर आगे के विचार विमर्श के लिए भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। समिति को लगभग 97 लाख सुझाव प्राप्त हुए थे। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बोधगया में बौद्ध ध्यान और आध्यात्म केंद्र बनाने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए 165 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इसकी पहली किस्त के रूप में 16 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस केंद्र का डिजाइन पश्चिम चंपारण स्थित केसरिया स्तूप से प्रेरित होगा। केंद्र पर ध्यान साधना के लिए विशेष कक्ष, डिजिटल प्रदर्शनियों समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। इस परियोजना को लागू करने की जिम्मेदारी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर मधुबनी से 1500 पंचायत सरकार भवन में स्थापित डाकघरों का उद्घाटन करेंगे। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि इन पंचायत भवनों में कई प्रकार की जनसुविधाएं दी जा रही हैं। राज्य के 129 नगर निकायों में बनाए गए आश्रय गृह में 4303 बेघर लोग रह रहे हैं। नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि ये सभी आश्रय गृह दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी के तहत बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पटना नगर निगम में 12 स्थानों पर स्थायी जर्मन हैंगर बनाए गए हैं। इनमें 406 लोगों के रहने की व्यवस्था है। श्री कुमार ने बताया कि पटना में 8 और जगहों पर जर्मन हैंगर प्रस्तावित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2000 रुपए के 98.21% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं और केवल 6366 करोड़ रुपए मूल्य के ऐसे नोट अब भी लोगों के पास है। गौरतलब है कि 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। आरबीआई के अनुसार ये सुविधा अब भी रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है। इसके अलावा आम लोग देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से 2000 रुपए के बैंक नोट अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए आरबीआई के किसी भी निर्गम कार्यालय भेज सकते हैं। आरबीआई ने बताया कि 2000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। लोक आस्था के चार दिवसीय महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन आज व्रती खरना का अनुष्ठान करेंगे। आज शाम व्रती भगवान भास्कर को खीर का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। 4 अप्रैल को उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ इस महापर्व का समापन हो जाएगा। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि राजधानी पटना में गंगा नदी के 48 घाटों पर जिला प्रशासन ने छठ व्रतियों के लिए व्यवस्था की है।
गंगा घाटों पर शौचालय, चेंजिंग रूम, वाटर टैंकर और चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पर्व की समाप्ति तक नदी में नाव परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा प्रमुख घाटों पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भीड़ की निगरानी की जा रही है। महापर्व छठ को लेकर राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। कल दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक अशोक राजपथ पर व्यवसायिक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। वहीं अटल पथ पर भी जेपी सेतु से सोनपुर की ओर जाने वाले सामान्य वाहनों पर रोक रहेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
हमारे औरंगाबाद संवाददाता ने बताया है कि देव सूर्य मंदिर में चैती छठ पूजा को लेकर विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
औरंगाबाद जिले के ऐतिहासिक धार्मिक और पौराणिक स्थल देव में चैती छठ व्रत के अवसर पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध 4 दिवसीय छठ मेला में बिहार के कोने कोने और देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं और व्रतियों का तांता लगा हुआ है। इस अवसर पर यहां के त्रेतायुनी सूर्य मंदिर को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जहां आज सुबह से ही भगवान भास्कर के दर्शन पूजन अर्चन का सिलसिला जारी है। जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि मेला में आने वाले श्रद्धालुओं तथा व्रतियों की सुविधा के लिए बिजली, पानी, आवासन, स्वास्थ्य, परिवहन, साफ सफाई के बेहतर प्रबंध किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार औरंगाबाद से कमल।
मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, कैमूर और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है, साथ ही हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने के आसार है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान औसत तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अधिकतम तापमान में कमी की संभावना है। अगले 72 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात न्यूनतम तापमान में कमी की संभावना है। अगले 2 दिनों राज्य का मौसम शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान खगड़िया राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य सरकार ने बढ़ती गर्मी के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों के परिचालन समय में बदलाव किया है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार अब सभी आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। ये आदेश 30 सितंबर तक लागू रहेगा। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम बुडको ने वॉलीबॉल खेल के विकास के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 43 लाख रुपए की मदद देने की स्वीकृति प्रदान की है। यह मदद कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर फंड से दी गई है। गौरतलब है कि राज्य में लोक उपक्रमों को खेल में सहयोग के लिए एक एक खेल आवंटित किया गया है। राज्य के स्कूली बच्चों के लिए आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव के पहले चरण में ऑनलाइन राउंड में पटना के अंबर सिन्हा और ईशान भूषण की जोड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है। समस्तीपुर के आर्यन राज और अभिराज की टीम दूसरे स्थान पर रही। खेल ज्ञानोत्सव के दूसरे चरण में प्रमंडल स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए भी इन टीमों ने क्वालिफाई किया है। प्रत्येक प्रमंडल से शीर्ष तीन टीमें प्रतियोगिता के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। आरा स्थित एक आभूषण शोरूम में भीषण आग लग जाने से लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है। गौरतलब है कि इसी शोरूम से पिछले दिनों अपराधियों ने करोड़ों रुपए मूल्य के जेवरात लूट लिए थे। इधर समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड के चकपहाड़ मोड़ में आग लग जाने से सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। दूसरी तरफ पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड के सरीसवा वार्ड नंबर 9 में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में एक दर्जन से अधिक घर जलकर नष्ट हो गए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के हवाले से लिखा है, अंतरिक्ष से अद्भुत दिखता है भारत। दैनिक जागरण ने गुजरात में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे पर लिखा है, अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 20 की मौत। दैनिक भास्कर ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में कुलपति और रजिस्ट्रार के बीच विवाद का शीर्षक दिया है। रजिस्ट्रार ने कहा, वीसी ने आदमी भेजकर धमकाया, वीसी बोले सारे आरोप बेबुनियाद। प्रभात खबर लिखता है, पूर्व मुख्य अभियंता तारणी दास के घर ईडी के पहुंचने का सूत्रधार बना संजीव हंस मामले का आरोपित। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा में आज वक्फ बिल पेश होने की खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पारित होने के लिए पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बोधगया में बौद्ध ध्यान और अध्यात्म केंद्र बनाने की परियोजना को मंजूरी दी। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन आज व्रती खरना का अनुष्ठान करेंगे। और मौसम विभाग ने कहा, अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, कैमूर और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर बारिश और वज्रपात की आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।